نحمد و نصلی علی رسول کریم. یہ کتاب ہے کمال الشین، شیخ طالب سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. آج کل عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد کی مجلس میں اس میں سے پڑھا جا رہا ہے، اور ہماری جمعے کی مجلس میں بھی اسی میں سے پڑھا جا رہا تھا. پھر بیچ میں رمضان کی وجہ سے حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ کی مجالس کو پڑھا گیا. یہ ہماری مجلس تو تزکیے کی مجلس ہے، تصفیے کی مجلس ہے، اس لیے اس کے اندر ہم اپنے اکابر بزرگوں کے، کبھی قدیم کبھی جدید، ان کے ملفوظات پڑھتے ہیں، کیونکہ مقصود ان کا یہی رہا ہے. اور اصل مقصود تو ہمارے دل کی اصلاح ہی ہے، تو اس لیے اس مجلس میں جب بھی آنا ہو یا کہیں جانا ہو، یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے. تو اللہ سے مانگ کر اپنے اندر ٹٹول ٹٹول کر کوئی اور غرض نکال دیں، ہماری ایک ہی غرض ہو کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ یہ مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ کی ہر عطا کا شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. تصوف سے اصل مقصود یہی ہے، تصفیہ اسی کا نام ہے، دل کی صفائی یہی ہے. ہم میں سے ہر کوئی اگر اپنے دل میں جھانکے تو صاف محسوس کرے گا کہ ہر وقت ایک کشمکش چلتی ہے، منفی جذبات ابھرتے ہیں، غلبہ پا لیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے غلط ہے، بچنا مشکل ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہے اختیار کرنا، ہمت نہیں ہوتی، تو ایک کشمکش چلتی رہتی ہے دل کے اندر. تو دل کے اندر ایسی صلاحیت حاصل کرنی ہے، ایسی قوت حاصل کرنی ہے، کہ ایسی ہمت حاصل کرنی ہے کہ اللہ پاک کی رضا مرغوب ہو جائے، محبوب ہو جائے، مرغوب ہو جائے، رغبت ہو، جی چاہے، اللہ کی ہر نافرمانی سے نفرت ہو، اس کو چھوڑنے والے بن جائیں اور بچنے والے بن جائیں. یہی اللہ والے ہر زمانے محنت فرماتے رہے. اب یہ کتاب جس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اخلاص کا باب چل رہا ہے. اخلاص تو عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے عمل کرنا، لیکن یہاں کچھ باتیں اور ذرا اعلیٰ قسم کی بتائی جا رہی ہیں. صفات کے اندر کیا ہم نے کمال پیدا کرنا ہے، اللہ کرے یہ شوق بھی لگ جائے. جیسے دنیاوی اعتبار سے جس پیشے میں ہیں، جس شعبے میں ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر اچھے سے اچھا مقام، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیں، نکھار آئے ہر چیز. اسی طریقے سے اللہ کرے کہ اعمال کے اندر بھی ہمیں یہ لگ جائے کہ اس پہ بھی نکھار آئے. تو یہ اللہ والوں نے اس کی محنت فرمائی ہے. تو یہ اس میں سے پڑھتے ہیں. اصل اس کو عطر تصوف بھی کہا گیا ہے، کہ تصوف کا ایکسٹریکٹ ہے، یہ عطر ہے اس کے اندر جو ہے. اور اللہ والوں نے اکثر خانقاہوں کے اندر اس کو اپنے نصاب کے اندر رکھا ہے، اس لیے اس کے اندر تاثیر ہے. اصل جو حضرت کی مرفوضات تھے یہ عربی میں ہیں، اس کا ترجمہ ہمارے قریب زمانے میں مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ ملفوظ پڑھا جائے گا اس کا ترجمہ، پھر اس کی کچھ تشریح کی ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر اس میں سے پڑھ لیں گے. ہیں ذرا اونچے درجے کے، توجہ سے سنیں گے، دل کی رغبت سے سنیں گے، تو انشاءاللہ سمجھ بھی آئیں گے، ورنہ تاثیر تو دل میں ضرور اترے گی. فرماتے ہیں، اپنے کسی عمل پر جس کا تو فاعل حقیقی نہیں ہے عوض کا طلبگار مت ہو. ایسے عمل پر تجھ کو یہی عوض کافی ہے، اس کو قبول فرمایا، اس پر مواخذہ نہیں کیا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر سے گزر گیا. اللہ سے مانگے اللہ سمجھتا فرما دے. یہ سالکین کے لیے ارشادات ہیں. سالک کون ہے؟ جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش میں جیسے چل رہا ہے، सालिक चलने वाले कहते हैं लेकिन हिस्सी नहीं है। जैसे यहाँ से भट्टा चौक चले गए, यहाँ से हम लाहौर शहर के अंदर चले गए, ये वो नहीं है। ये जो हमारे अंदर कश्मकश चल रही है, अल्लाह की रज़ा किसके अंदर है? अल्लाह की अतात के अंदर है। अल्लाह की अतात क्या है? शरीयत मुतहरा ने बिल्कुल वाज तौर पर एक एक चीज़ अर्शा फरमा दी। तो असल तो वही है, नाज़िल शुदा शरीयत है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें और क़्यामत वाले क़्यामत तक आने जमानों के लिए अता हुई है। उसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई। अल्लाह हमें शौक लगा दे, हमारे दिल में सच्ची तलब पैदा हो जाए कि हमारी ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसके तफसीली अहकाम शरीफ न बताएं, जुज़ियात तक बताई हैं, हमें शौक नहीं है। अल्लाह करे शौक लग जाए। ये सफाई इसीलिए है क्योंकि अंदर मादियत ने गलबा किया हुआ है, मादी लज्जतों ने। आज के ज़मानों के अंदर सबसे बड़ा फितना यही है कि हमारी रगबात बदल रही है, हम मादी लज्जतों ही के शौकीन हो गए हैं, इसलिए जो इसमें मिल रहा है इसके लिए सब कुछ कुर्बान करते जा रहे हैं। आजकल वैसे हमारे मौजूद नहीं है सियासत और इंशाल्लाह होगा भी नहीं, इस पर बहस या इस पर जाने के लिए पूछते हैं, कहते नहीं मैं इसमें नहीं, ये नहीं कि पता नहीं, गुजर कर आए हैं हम तो सारे माहौलों से गुजर कर यहाँ पर आए हैं। लेकिन एक बात सोचने की है, इस मुबारक महीने के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, दिल रोता है। ये रातें किसके लिए थी, ये अयाम किसके लिए थे? एक मजमूई तौर पर एक फिज़ा ऐसी नफरत की, मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह दुआ भी की और जिक्र भी किया इसका, जो इसका क्या हो, नफरतें ऐसी फैल गई हैं एक दूसरे के ताल्लुक से और ऐसे जुमले बात का तो हैरत होती है। मेरी अहलिया को किसी का आया, मुझे उन्होंने पढ़ाया, मैं हैरान रह गया। अपने कायद से, अपने जिससे मोहब्बत है उसके, आप अगर कहें इस्लाम को भी छोड़ने को तैयार है, अब बताओ ये क्या जुमला है? मैं तो कहाँ पर गया पढ़ के, क्या हो रहा है? क्यों मुसलमान हैं, कहला रहे हैं मुसलमान, मुसलमान ने घर में पैदा हुए हैं, इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की, इस्लाम की हकीकत को समझने की कोशिश नहीं की, मादियत ने दिलो दिमाग पर कब्जा किया हुआ। इसलिए ये ज़रूरत है दिल के अंदर मेहनत करने की कि दिल के अंदर वो शफाफत आए, लताफत आए, पाकिजगी आए, दिल के अंदर वो सलाहियत आए जो हमें है, हमारे खालिक जो है, हमारे मालिक जो है, हमारे अल्लाह जो हैं, उसकी मोहब्बत दिल के अंदर ऐसी घर कर जाए, उसकी अकात महबूब हो, उसके नाफरमानी से नफरत हो। है तो यहाँ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये चूँकि इस वक्त सिलसिला रमज़ान में शुरू हुआ था, अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो इसको फिर पढ़ लेते हैं। इसके अंदर जो है तो ये वो सालिक है जो सलूक की मंजिलें तय कर रहा है। सलूक की मंजिलें मैंने अर्ज़ किया हिस्सी नहीं है, ये दिल के अंदर से चाह रहा है अल्लाह की रज़ा पर आने के लिए और अल्लाह की रज़ा वाले आमाल को करने के लिए। रुकावट क्या है? हमारे दिल के अंदर एक ज़ोफ़ आ गया, एक कमज़ोरी आ गई है कि रग़बत नहीं है, है? अल्लाह की मोहब्बत जो है दावा तो है लेकिन उसकी अतात की रग़बत नहीं है। जानते हैं बेहिम्मत हो जाते हैं, है? तो ये एक कश्मकश नफ्स के साथ चलती रहती है जिस पर इससे मगलूब हो जाते हैं। तो वो सलाहियत हासिल करनी है कि नफ्स जब उभर इसको दबा दे, माहौल की फ़िज़ाएँ गलबा करें, इससे बच जाएँ, हैं? और उस पर आए जो अल्लाह चाह रहा है, क्योंकि अल्लाह की रज़ा जो है उसकी अतात में है और उसकी नाराज़गी उसकी नाफरमानी में है। अब अतात भी वाज़े है, नाफरमानी भी वाज़े है, हुँ? अब हमने इस पर चलने की हिम्मत हासिल करना है तो नफ्स की इस कमज़ोरी को दूर करना, फ़िज़ाओं का जो गलबा हो जाता है इससे बचना। तो ये एक तरीके बताते हैं अल्लाह वाले जो हैं, तस्फिया यही है, हैं? तो यहाँ पर चूँकि इखलास का बाब चल रहा है तो इसके भी दर्जात हैं, हैं? तो ये आला तरीन दर्जों की तरह बुला रहे हैं, हैं? कि उस पर हम आएँ। तो अब इस पर दोबारा सुन ले क्या फरमा रहे हैं, अपने किसी अमल पर जिसका तू फ़ाइल हकीकी नहीं है इवज़ का तलबगार मत हो। ऐसे अमल पर तुझको यही इवज़ काफ़ी है कि इसको कबूल फरमाया, उस पर मुआखज़ा नहीं किया। ये तो मलफूज का तर्जमा है, अब इसके अंदर जो बात समझाना चाहते हैं मौलाना अब्दुल्ला गुहरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जानना चाहिए कि तमाम अफ़आल का फ़ाइल हकीकी अल्लाह ताला है। जानना चाहिए कि तमाम अफ़आल का फ़ाइल हकीकी अल्लाह ताला है, ख़ाव अफ़आल बंदों के या किसी और के। मुश्किल मज़मून है थोड़ा ही, क्योंकि आज की फ़ज़ाओं के अंदर मैंने किया है, अभी मैंने नमाज पढ़ी है ना, जुम्मा मैंने पढ़ा है ना, ये जो मैं है मैं क्या हूँ, मेरी हकीकत क्या है, मुझे किसने पैदा किया है, ये ज़िंदगी किसने दी है, ये अकल किसने दी है, ये शऊर किसने दिया है, ये आज़ाद जवानों के अंदर सलाहियत किसने दी है, तो फ़ाइल हकीकी तो कौन मिलेगा, अल्लाह। मैं नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना दे। कितने इंसान ऐसे आप देखेंगे कि बिल्कुल अकल के एतबार से हर लिहाज से सही है, लेकिन बाज़ का अकल के अंदर ही कोई आ जाती है, ऐसी बात आ जाती है, एक पुर्जा थोड़ा सा ख़राब हो गया तो अच्छा बना बनता है। तो ये दिन रात मुशाहदा करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, जब दिल के अंदर शफाफत आती है, लताफत आती है, पाकिजगी आती है, तो दिल का शऊर बेदार होता है, तो दिल फिर बताता है, नज़र आता है कि मैं कुछ नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मेरा बोलना मेरा ज़ाती नहीं है, अल्लाह पाक की तरफ से जो अताई कुव्वत है उससे बोला जा रहा है। तो हकीकत में बोलना बुला कौन रहा है, अल्लाह है। अभी ज़बान के अंदर जो है ऐसे वाक़ियात हुए हैं, रावी महर एक बुज़ुर्ग थे माशाल्लाह, बहुत अल्लाह वाले, उर्दू में, अरबी में, अंग्रेज़ी में बड़ा अच्छा बयान करते थे। एक दफ़ा अच्छा एक ज़माना गुजारा उन्होंने, क्या जी ज़बान का फालज हो गया, अब बोल नहीं सकते, बेटे बेटे देखते रहते थे, बैठे होते थे, सुन रहे हैं, लिख कर जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन वही ज़बान जो एक ज़माने तक बोलती, और तासीर थी उनके बोलने में, अरब बहुत मुतासर होते थे और भी मुतासर होते थे। तो ये हमारा अपना काम है, जब तक अल्लाह चाह रहे हैं, तो ये अब ये जो हमारे अंदर बात नहीं, मैं ये कर लूँगा, है क्यों, जब तक अल्लाह ने सलाहियत बाकी रखी हुई है, इसमें हमें अपने आप में अपने उसमें आ रहे हैं। तो यहाँ जब ये दिल के अंदर सफाई आती है, तो फिर ममनूनियत होती है, अल्लाह तेरा शुक्र है, आज़ाद वाले को तूने सही रखा है, ये अल्लाह ने काम करा लिया, मैं कौन था इसका है। तो यहाँ पर है, पर जानना चाहिए तमाम अफ़आल का फ़ाइल हकीकी कौन है, अल्लाह ताला, खा वो अफ़आल बंदों के हों या और किसी के। बस बंदे की नज़र इबादत में इस पर होनी चाहिए कि फेल पैदा किया हुआ अल्लाह ताला का है, उसका एहसान है। ये हमने जुम्मे की नमाज पढ़ ली है, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें तौफीक दे दी और सलाहियत दे दी कि हम अपने घरों से निकलकर आ गए और हमने नमाज पढ़ ली। अब ये अल्लाह के दरबार के अंदर हाजिर हैं, बैठे हुए हैं, अपने दिल की इस्लाह की फिक्र लेकर जी है, ये अल्लाह की तौफीक से है, तो फ़ाइल हकीकी कौन है, अल्लाह है। तो इबादत पे नज़र होनी चाहिए कि फेल पैदा किया किसका, अल्लाह ताला का, और उसका एहसान है। बस जिस फेल का दर हकीकत बंदा खालिक व फ़ाइल नहीं है, इस पर इज़्ज़त का तलब करना बिल्कुल बेमाल है। अब हम यूँ कहें, अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी और नमाज पढ़ ली, कि अल्लाह से मुतालबा के नमाज पढ़िए, मिलना चाहिए, अब तो इस पर हमें कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़िए नमाज पढ़िए है, अब ये मैंने पढ़ी है, अल्लाह ने पढ़ाई है, ये अपनी कुव्वत से मैंने पढ़ी है, फिर अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमा दे, जो अमल हम कर रहे हैं, हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अक्सर तज़किरा किया जाता है, क्योंकि मोहसिन है, उनकी बरकत से हक़ायक़ खुले हैं, उनकी बरकत से जो वो दिल के अंदर जो है ये एहसास बेदार हुआ है, उसको मैं करते थे कि सवाब के लिए अमल करोगे तो मीज़ान कायम की जाएगी, जी अब बाद इतराज़ करेंगे, एक तरह से बात की किसी ने बाद मुझे पकड़ लिया, आप स्वाब की नफी करते हैं, बात को समझा नहीं कहा क्या जा रहा है। अगर सवाब के लिए अमल करोगे कि सवाब मिलना चाहिए तो फिर क्या होगा, उसको तोला जाएगा हैं? क्यों जी हैं? एग्जामिनर जो है परख के फिर बताता है जवाब सही है कि नहीं है। क्यों जी बंदा कहता है तालिब इल्म कहता है मैं सारे सवालों को जवाब दे आया हूँ, क्यों जी हैं? इसकी मान ली जाएगी हैं? अब इसमें से आप चाहते हैं कि मुझे इतने नंबर मिले हैं तो उस नंबर के काबिल है अमल के नहीं। अगर हमारा ये ख्याल है और हमारा ये जज्बा है कि मुझे इस पर सवाब मिलना चाहिए तो फिर क्या होगा, माते मीज़ान कायम की जाएगी, फिर उसको हर तरह से परखा जाएगा हैं। और अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करोगे तो इससे ऊपर पावर चल जाएगा कि या अल्लाह कर तो लिया है, तेरी तौफीक से हो तो गया है, लेकिन ये तेरी शायान शान नहीं हुआ, तेरी शायान शान नहीं हुआ है? बस तो कबूल फरमा ले। तो यहाँ यही कह जा रहे हैं या फरमा रहे हैं बस जिस फेर का दर हकीकत बंदा खालिक फायल नहीं है, इस पर इज़्ज़त का तलब करना बिल्कुल बेमहल है। बस अगर सवाब व अजर का तालिब हुआ इसमें इखलास ना रहेगा। इखलास तो खालस है कि हुक्म की तामील में अमल किया है कि अल्लाह का मैं बंदा हूँ, वो मेरा खालिक है, उसका हुक्म है, मैं तो हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। इसी तरीके से फरमाते हैं कि ये भी यहाँ भी ये होना चाहिए है, ऐसे अमल पर इवज यही काफ़ी है। हाँ फरमाते हैं कि फिर दोबारा पढ़ लेते हैं, जानना चाहिए कि तमाम अफ़आल का फ़ाइल हकीकी अल्लाह ताला है, खाव अफ़आल बंदों के हों या और किसी के, बस बंदा की नज़र इबादत में इस पर होनी चाहिए कि ये फ़ेल पैदा किया हुआ अल्लाह ताला का उसका एहसान है। बस जिस फ़ेल का दर हकीकत बंदा खालिक फ़ाइल नहीं है उस पर इज़्ज़त का तलब करना बिल्कुल बेमहल है। बस अगर सवाब व अजर का तालब हुआ इसमें इखलास ना रहेगा, ऐसे अमल पर यही इवज़ काफ़ी है कि मौला हकीकी ने इस अमल को कबूल फरमा कर सवाब दे दिया, फिर ममनूनियत है, एहसान है, मुआवजा भी फरमाया, वरना वो काबिले गिरफ्त था। अगर इसको परखा जाएगा तो ये इसके अंदर जो कमियाँ हैं, इसके अंदर जो है हमारे अंदर का जो खोट है, हैं तो इस पर तो गिरफ्त होनी चाहिए, तो गिरफ्त नहीं हुई तो यही बहुत बड़ी बात है। और सवाब तो फिर अल्लाह देंगे, इंशाल्लाह देंगे। अल्लाह हमें जो है इसको समझने की और इखलास के आला मुकाम को हासिल करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आगे फरमाते हैं, गुनाह और नाफरमानी करने के वक्त जिस कदर तू हिलमे खुदाबंदी का मोहताज है, बंदगी और ताक करने के वक्त उससे ज़्यादा उसके हिलम का हाजत मांग है। एक से एक बढ़कर बात है। गुनाह और नाफरमानी करने के वक्त जिस कदर तो हिलम खुदाबंदी का मोहताज है, बंदगी और ताक करने के वक्त उससे ज़्यादा उसके हिलम का मोहताज है। ये तर्जमा है हजरत के मलफूज का। इसके आगे फ़ायदे में लिखते हैं मौलाना अब्दुल्लाह गुमरी रहमतुल्लाह कि बंदे का कमाल और मर्तबा और तमाम इबादात का असली मकसूद यह है कि बंदा बंदे की नज़र हर अमर में अल्लाह ताला की तरफ ऐसी हो जैसे भीख मंगा साइल होता है, और अपना अमल और फेल हत्ता कि अपना वजूद नज़र से बिल्कुल उठ जाए, अल्लाह ही पर इत्माद हो, उसी के साथ दिल को करार हो और उसी के साथ दिल का रुख हो, अपनी तदबीर असबाब ज़ारा से बिल्कुल भरोसा उठ जाए, ये बंदे का कमाल है। और मर्तबा है तमाम इबादत का असली मकसूद ये है कि बंदे की नज़र हर अमर में अल्लाह ताला का ऐसे जैसे भीख मंगा साहिब होता है, और अपना अमल और फेल हत्ता के अपना वजूद नज़र से बिल्कुल उठ जावे, अल्लाह ही पर एतमाद हो, उसी के साथ दिल को करार हो, उसी के साथ दिल का रुख हो, अपनी तदबीर और असबाब ज़ारा से बिल्कुल भरोसा उठ जाए। और बंदे की पस्ती हलाकत इसमें है कि अपने नफ्स की तरफ मुतवज्जे हो और अपने अमल को पसंद करे और अपने फेल को अच्छा जाने और अपनी कदर उसके दिल में हो, ऐसा बंदा अल्लाह ताला की बारगाह से मर्दूद होता है। اب دیکھیے کتنے زہر کے الفاظ کتنے سخت ہیں. اللہ اس کی حقیقت نصیب فرما دے. اس کے بعد یہ سمجھو, یہ سب کو معلوم ہے کہ گناہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حلم کا محتاج ہے. یہ عام سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرمائے. اللہ تو حلیم ہے نا, ہمارے گناہوں کو وہ اپنے صفت حلم سے درگزر کر دیتا ہے. تو یہ اس کا تو حاجت مند ہے. اور اطاعت اور عبادت چونکہ اہم رضائے الہی ہے, اس میں حلم کا حاجت مند نہیں ہے. یہ عام سمجھتے ہیں. اس لیے کہ حلم تو خلاف رضا کام کرنے پر ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی بلکہ اکثر معاملہ برعکس بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بلکہ اکثر کہ گناہ کے وقت حلم کا اتنا محتاج نہیں جتنا طاعت کے وقت ہوتا ہے. یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. یہ ہیں صوفی. جب دل کے اندر صفائی آ جاتی ہے نا, تو پھر یہ باتیں کھل کے سامنے آتی ہیں. پھر میں نکل جاتی ہے, میرا عمل نکل جاتا ہے. پھر عمل کے اندر جو نقائص ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں, ان کو دیکھ کر یہ بتا رہے ہیں. ہمارا تو اندر بھرا ہوا نا سارا گندگیوں سے, اس لیے ہمارا تو دھیان اس طرح بھی جائے گا. یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اصل بات تو چونکہ طاعت اور عبادت چونکہ رضا الہی ہے, اس میں حلم کا حاجت مند نہیں. اس لیے کہ حلم تو خلاف رضا کام کرنے پہ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی بلکہ اکثر معاملہ برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ گناہ کے وقت حلم کا اس قدر محتاج نہیں جس کا طاعت کے وقت ہے. شرع اس اجمال کی یہ ہے کہ مومن کی شان گناہ صادر ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ انکسار, عاجزی, ندامت, ذلت, اپنے نفس کو نفرین اور بارگاہ الہی میں تضرع و زاری و توبہ پیدا ہوتی ہے. عام ہے نا, جس کے دل کے اندر تھوڑی بہت بھی رمق ہے نا, تو گناہ کے بعد شرمندہ ضرور ہوتا ہے. اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے. جتنی اس کے اندر یہ زیادہ ہوگی اتنی نفرت ہوگی. گناہ ہو گیا, عاجزی, ندامت, ذلت, نفس کی نفرت اور بارگاہ الہی میں تضرع و زاری, توبہ. اس حالت میں ایک نظر اپنے نفس اور عمل کو نہیں جاتی, بلکہ دل اس صفت کا رنگین ہو جاتا ہے کہ بجز رحمت اور فضل کے میرا کہیں ٹھکانا نہیں. اور یہی صفت عین مقصود اور بندے کا کمال ہے. اور طاعت و عبادت کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر اس عمل پر ہوتی ہے, اس کو اچھا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو مسیح سمجھتا ہے اور عابد سمجھتا ہے, حق ادا کرنے والا اور مستحق کے ثواب جانتا ہے کہ کام تو کر لیا, اب تو میں مستحق ثواب کا ہو گیا ہوں. اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس پر ہوئی اور عمل پر ہوئی اور رحمت و فضل سے اعتماد اٹھ گیا, تو اس وقت عجب نہیں کہ اس پر غضب الہی اور نارضامندی کا مورد بنے. پر ایسی طاعت پر یہ بندہ حلم خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ محتاج ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرما دے. یہ نہیں ہے کہ گناہوں کو ضرورت ہو جائے. گناہ کے اندر شرمندگی تو ہوتی ہی ہے. مسلمان جس میں رمق ہے خود بخود ہو جاتی ہے, اور اس میں نفرت بھی ہوتی ہے اپنے آپ سے. لیکن اطاعت کے اندر جگہ یہ جیت پیدا ہو گئی کہ اس کو کمال سمجھ لیا, تو اس کے اندر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ عمل تو یا اللہ تو نے کرا دیا ہے, لیکن اس میں میرے نفس کی شرارت ضرور ہوگی. اس لیے اس کے بعد بھی اللہ سے مانگنا. اس لیے میرے حضرت جی رحمۃ اللہ کے تین جملے میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں. عمل کرنے کے بعد تین استحضار. ایک تو الحمدللہ علی التوفیق, یا اللہ تیرا شکر ہے تیری توفیق سے ہو گیا. ہم نہیں کر سکتے تھے, تیری توفیق سے یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ مجھ سے ہوا ہے اور میرے اندر نفس ہے, اور نفس جو ہے یہ ڈنڈی مارتا ہے, یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے. اس لیے استغفر اللہ عن تقصیر, اس میں جو مجھ سے تقصیر ہوگی یا اللہ تو معاف فرما دے. تو پہلے ہی ہاتھ جوڑ دیے. اس کے بعد پھر وہ مالک مختار ہے, وہ قبول کرے یا رد کر دے کہ میں نہیں قبول کرتا, جاؤ پھر کیا کریں گے. تو پہلے پناہ مانگ لو, اعوذ باللہ من الرد, یہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ یہ رد نہ ہو جائے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے कि जो हर वक्त अल्लाह की तरफ ऐसे मुतवज्जे हो और हमारे अंदर अपने नफ्स पर हर वक्त इसकी निगरानी करें। हाँ, इसलिए दिल के अंदर जब मेहनत होगी और दिल में नूरानियत होगी और दिल में शफाफत होगी, दिल में पाकिजगी होगी, तो दिल के एक सिफत बनेगी कि अमल करके भी ये अल्लाह की तरफ ही मुतवज्जी होगा, उसके शुक्र के जज्बात के साथ कि तेरी तौफीक से हो गया, लेकिन मैं इसमें मेरे नफ्स की शरारत मौजूद है, या अल्लाह मुझे इसकी शरारत से तू महफूज फरमा ले, और फिर भी जैसा कैसा भी है बस तू कबूल फरमा ले। तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमारे दिलों को ऐसा बना दे। ये मुबारक महीना अल्लाह ने हमें दिया ही इसलिए है, तेज़ी से गुजर गया, दो अशरे गुजर गए हैं, अब एक है, अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हैं जो गुजर गया उसकी तलाफी भी हो सकती है, तौबा से, नदामत से, इस्तग़फार से। ये अल्लाह की ज़ात इतनी करीम ज़ात है कि गो 20 दिन हमने गुजार दिए, निगाहों की हिफाजत नहीं की, कानों की हिफाजत नहीं की, ज़बान की हिफाजत नहीं की, दिल की हिफाजत नहीं की, हमें सही तरीके से अमाल नहीं हुए, ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब भी अगर नदामत के आंसुओं से अल्लाह के आगे रो लेंगे, गिड़गड़ा लेंगे, इकरार कर लेंगे, अल्लाह से मांग लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी तलाफी भी हो जाएगी। है तौबा गुनाहों को मुनहदम कर देता है, तौबा मुनहदम कर देती, तो गुनाहों से है तौबा भी हो, लेकिन एक बात जहन में ज़रूर रहे कि गुनाह तौबा से माफ़ हो जाएगा, हकूक़ माफ़ नहीं होंगे। ये दो मुस्तकिल चीज़ें हैं, हकूक़ माफ़ नहीं होंगे, इसलिए इसकी फिक्र भी हो, जहाँ गुनाहों से तौबा करें साथ ये भी अल्लाह से मांगे कि जिनके हकूक़ हमारे ज़िम्मे हैं अगर अदा कर सकते हैं तो कर दें, माल देना है किसी का, वैसे लेना है, जो भी हक है, है? अगर हिम्मत नहीं है तो अल्लाह से मांगो, है? उससे माफ़ करो, है? किसी पर अगर वैसे ज़्यादती किया तो उसे माफ़ी मांग ली जाए। तो ये ज़रूरी है इस मुबारक महीने के अंदर, जो है शुरू में बात आई थी, है कि यह है ना कि बिल मुशाफा माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, नई तहरीर के ज़रिए हो जाए, ये भी ज़रूरी है। तो जहाँ हमने तौबा करनी है, है? उसके साथ हकूक़ की फ़िक्र भी, अज़म होगा, इरादा होगा कि हक अदा करना है, अल्लाह हिम्मत देंगे, अल्लाह सबाब भी मुहैया फरमाएंगे, अल्लाह वसाइल भी मुहैया फरमाएंगे, फिक्र हो इसकी जो है ना, एक ये जो अशर आगे है इसमें तो मगफरत आमा बारिश की तरह बरसेगी जी। माशाल्लाह तफसील तो मुफ्ती साहब ने आज बताई दी हमें, है कि कैसे हमने इस अशरे के अंदर आसान तरीके से बरकत को हासिल कर सकते हैं, है? बस एक अज़म पैदा हो जाए, है? मुश्किल नहीं है, गिनती के दिन है, फिर पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। खुशनसीब है जो इतकाफ़ पर बैठ रहे हैं, है? जो इतकाफ़ पर नहीं बैठ रहे हैं तो शबे कदर को हासिल करना चाहते हैं तो कम से कम दर्जा क्या है कि मगरब की नमाज जमात के साथ, इशा की नमाज जमात के साथ, है मगरब के बाद अवाबीन के नफल पढ़ लें, है? है और फिर तहज्जुद में उठे तो होते ही हैं, सहरी तो है ही तहज्जुद में, है तहज्जुद भी पढ़ लें, और कुछ उस वक्त जिक्र भी कर लें, है कुछ अल्लाह के आगे रूह गड़गड़ा लें, है तो इंशाल्लाह जो रात भी होगी हमारा हिस्सा पड़ जाएगा इसमें, है अल्लाह हमें इन अयाम की, इन घड़ियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अब दिल के अंदर ये सलाहियत पैदा करने के लिए कि दिल हमें हमारा रहनुमा बन जाए, हमें अल्लाह के करीब करे, अल्लाह की नाफरमानी से रोके, इस सलाहियत को हासिल करने के लिए ये अल्लाह के जिक्र की मशक है। एक तरीका ये भी है जिसकी हमारे यहाँ मशक की जाती है, वो जिक्र कल्बी है, जिक्र खुफी है, दिल के अंदर छुपके छुपके अल्लाह को याद करना। इसका मुस्तकिल हुक्म भी है, वज़्कुर रब्बा का फिर नफ्से का तदर्रुअन व खीफतन व दून अल जहर मिन अल खौल बिल गुदुव वल असाल वला तकुन मिन अल गाफिलीन। फरमाया जा रहा है अपने रब को अपने जी में याद करो, यानी अपने दिल में आजजी के साथ और पुकारे बगैर चुपके चुपके, और सुबह भी याद करो, शाम भी याद करो, कसरत याद करो, और गाफिलीन में से ना हो। तो दिल को गफलत से बेदार करने के लिए कुरान एक इलाज ये भी बता रहा है, इस दिल में चुपके चुपके कसरत से अल्लाह की याद बसा लो। अल्लाह पाक फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जब तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हें याद रखूँगा। हमारा याद करना अल्लाह के नाम के साथ है, दूसरे का तुम्हारे वह कृष्ण रब्बी का वह तब्बतल इलेही तब्तीला, रब को उसके इसम से याद करो। तो एक तरीका जिक्र का यह भी है कि अल्लाह के नाम को हम दिल में रचा लें बसा लें, एक शॉर्टकट रास्ता है, ताकि इससे जिसको याद कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, उसका ध्यान ख्याल हमारे दिलो दिमाग में रग रग रेशे में ऐसे समा जाए, तन्हाइयों के अंदर भी उसकी हर अताब को डाल दे, हर नाफरमानी से रोक दे, हर हराम काम से रोक दे। हैं तो एक तसव्वुर की मशक है कि तसव्वुर से तन्हाई में बैठ के, वैसे फ़ायदा तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन जो सलाहियत हम लेनी है नफ्स की कुव्वत को तोड़ने के लिए, माहौल की गंदी फ़िज़ाओं से बचने के लिए जो है, इसके लिए कुछ अलहदगी में बैठें और दिल पर लिखें लफ्ज़ अल्लाह, तसव्वुर के कलम से लिखें, लिखा हुआ तसव्वुर करें और तसव्वुर से यानी अपने इरादे से दिल में तकरार करें अल्लाह। फतबारा कस्म रब्बी का, अल्लाह फरमा रहे हैं कि रब का इसम जो है बड़ा मुतबर्रक है, तो लफ्ज़ अल्मा इसका तबर्रुक लेना है, इसकी बरकत लेनी है, इसको दिल में नक्श कर लें, इसको दिल में रचा लें बसा लें। ये तकरार के ज़रिए होगा, जैसे हाफिज तकरार करता है तो उसकी सीने में कुरान महफूज हो जाता है, ये अल्लाह के नाम की तकरार से उसकी याद सीने महफूज हो जाएगी, तन्हाइयों में भी याद रहेगा, हमें गुनाहों से रोक देगा, हमें अताब पर उसको उभारेगा। है अब थोड़ी देर की इसकी मश कर लें, तसव्वुर से दिल पर लफ्ज़ अल्लाह लिखें, लिखा तसव्वुर करें हैं, और अपने इरादे से दिल पर तकरार कर लें अल्लाह 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 अल्लाह, थोड़ी देर मश कर लें।
اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره بيننا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين يا الله اس رمضان کے بعد اوقات میں اپنی کامل محبت و معرفت نصیب فرما یا جیسے ہمارے حضرات نے پڑھ کر سنایا یا جو ان کاملین کو اللہ کی محبت ملی یا اللہ ان کاملین کو جو آپ نے اپنی معرفت عطا فرمائی یا اللہ نیکی در کی بھی ان کے اندر عاجزی تھی یا اللہ نیکی کے اندر بھی عبدیت تھی یا اللہ ہم کو ایک کامل عبدیت نصیب فرمائی یا اللہ کامل معرفت نصیب فرمائی یا اللہ مقربین والا ایمان مقربین والا تقویٰ مقربین والی نماز مقربین والا نماز والی دعا مقربین والا ذکر یا اللہ ہم کو مقربین میں شامل کر فرمائے اللہ جتنے اوقات رمضان کے باقی ہیں اس کی رحمت برکتیں نصیب فرمائے اللہ جتنے اسباب محرومی کے ہیں محرومی کے اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کے محرومی سے ہر قسم کے بدبختی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چلنا نصیب فرما اللہ حضور کے طریقوں میں بڑھنا نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرما آخرت کی منزلیں آسان فرما یا اللہ قبر کی منزلوں کو آسان فرما دے آمین یا رب العالمین اللهم نسألك من خير ما سألنا عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان بيد الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم